गाथा, रूप वही, रूप नया।
गाथा में आप सुन रहे हैं विजय कुमार संपत्ति की लिखी कहानी अटेंशन। कुछ दिन पहले तक मेरी हालत बहुत खराब थी। मुझे कहीं से भी कोई भी अटेंशन नहीं मिल रही थी। हर कोई मुझे बस टेंशन देकर चला जाता था, जैसे मैं रास्ते का भिखारी हूँ और मुझे कोई भी भीख में टेंशन दे देता था। मैं बहुत बहुत दुखी था। कोई रास्ता नहीं सुझाई देता था। मुझे कहीं से कोई भी अटेंशन मिलने के आसार नज़र नहीं आ रहे थे। मैंने बहुत कोशिश की इधर से उधर, किसी तरह से तो मुझे अटेंशन मिले, लेकिन मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, उल्टा टेंशन बढ़ गई। ऊपर से बीवी बच्चे, आस पड़ोस के लोग ताने मारते रहते थे कि भैया इतनी उम्र हो गई और मुझे कोई जानता ही नहीं। रोज अखबार और टीवी रेडियो में दूसरों के नाम और उनके किए गए अच्छे बुरे काम देख पढ़ सुनकर दिल जो है ना वो जल जाता था। मुझे लगने लगा था कि मेरा जन्म बेकार हो गया है। थक हार कर मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त को फोन लगाया और उससे अपना दुखड़ा रोया। उसने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की कि अटेंशन पाने के चक्कर में मेरी टेंशन बढ़ जाएगी। उसने कहा कि अटेंशन सिर्फ बुरे कामों में मिलती है, अच्छे कामों में कम मिलती है। अब इतने वर्षों से मैं अच्छा बनकर रह रहा हूँ, लेकिन मुझे तो कोई अटेंशन नहीं मिली। सोच लिया कि बुरा बनकर ही अटेंशन लूंगा। उसने बहुत समझाया लेकिन मैंने एक ना सुनी। मैंने उससे कह दिया कि अगर वो मुझे कोई उपाय ना बताए तो मेरा दोस्त ही नहीं। अब भैया बरसों की दोस्ती दांव पर थी। उसने मुझसे पूछा कि अगर मैं ऑफिस में कोई पैसों की गड़बड़ करूं तो मेरा नाम पुलिस के पास जाएगा और इस तरह से मुझे अटेंशन भी मिलेगी। मैं थोड़ा सा हिचकिचाया। मैंने कहा यार इतने वर्षों में जो नहीं हुआ वो काम करके बुढ़ापे में क्यों अपना नाम खराब करूं। फिर उसने कहा कि मैं अपने बॉस को छुरा भोंक लूं, शायद इससे मुझे प्रसिद्धि मिल जाए। उसका ये उपाय पसंद तो मुझे बहुत आया क्योंकि मैं अपने बॉस को बहुत सख्त नापसंद करता था, लेकिन छुरा मारने के नाम से दिल खराब था क्योंकि आज तक मैंने कोई भी मारपीट नहीं की थी। मैंने उससे कहा कि मैं एक काम करता हूँ, मैं उसके खाने में जहर मिला देता हूँ। दोस्त ने पूछा लेकिन इससे तेरी तरफ तो कोई टेंशन आएगा नहीं, किसी को जब पता ही नहीं चलेगा कि ये काम तूने किया है तो तेरी तरफ किसी की अटेंशन नहीं आएगी। भाई उसकी बात में दम तो था। फिर उसने कहा एक काम कर, उसके चेहरे पर स्याही फेंक दे, जब वो किसी मीटिंग में होगा तब तुझे अटेंशन मिल जाएगी। अब ये आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा आइडिया था ये। दूसरे दिन जब ऑफिस की बोर्ड मीटिंग थी तब मैंने भरी मीटिंग में अपने बॉस पर चिल्लाया और उससे कहा कि उसने मेरी जिंदगी खराब कर दी है, और ये कहकर गुस्से में अपने पेन की स्याही उसके ऊपर फेंक दी। मगर वो बॉस वो सावधान था, झुक गया और मेरी द्वारा फेंकी गई स्याही हमारे कंपनी के मालिक पर गिरी। मेरे कंपनी के मालिक ने दुनिया देखी थी, उसने मेरा गुस्सा सहन कर लिया और समझदारी से काम लिया। उसने मेरे बॉस की और मेरी तनख्वाह 25% कम कर दी और कहा कि अगली बार इस तरह की घटना होने पर हम दोनों को नौकरी से हटा देगा। भाई इस घटना से तो मुझे कोई अटेंशन नहीं मिली, लेकिन घर आने पर पत्नी ने मेरी तनख्वाह कम होने वाली बात पर ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि मेरे 53 तक काम गए। मैंने फिर अपने दोस्त को फोन किया, कहा भाई मुझे कोई ज़्यादा अटेंशन नहीं मिली है और अब लोग इस घटना को भूल भी चुके हैं, मैं कुछ धमाकेदार कार्य करना चाहता हूँ, कुछ रास्ता बताओ मेरे दोस्त, कुछ रास्ता बताओ। मेरे दुनियादार दोस्त ने कुछ देर सोचा और कहा कि यार तुम मोहल्ले की कोई औरत को छेड़ दे, पुलिस आकर तुझे ले जाएगी और तुझे इस दुष्ट काम के लिए हर कोई कोसेगा और तेरी बड़ी बदनामी होगी। इस काम से तो तुझे 100% अटेंशन मिल जाएगी, पक्का 100% अटेंशन तुझे इस काम से मिल जाएगी। बात में दम तो था, कॉलेज के जमाने में अक्सर ऐसा करने से मोहल्ले में बातें भी होती थी। समय उसकी बात मान गया। अब मैं शाम को मोहल्ले के नल पर जाकर पानी भरने के लिए बाल्टी साथ में ले गया। मेरी पत्नी ने कहा, मेरी तबीयत तो ठीक है ना, जिस आदमी ने जिंदगी में काम नहीं किया वो आज पानी भरने जा रहा है। मैंने कहा, कोई खास नहीं, बस ये समझ लो कि तुम्हारी मदद करना चाह रहा हूँ। मोहल्ले में एक ही नल था और शाम को वहाँ बड़ी भीड़ रहती थी। बहुत सी औरतें जिन्हें मैं भाभी कहता था और होली के दिन रंग डालकर छेड़ता था, वहाँ पानी भरने आती थी। वो सब वहाँ पर थीं और मुझे देखकर आश्चर्य से हंसने लगीं। सबने पूछा, आज होली तो है नहीं, फिर आज पानी भरने तुम यहाँ कैसे? मैंने मुस्करा कर कहा, मैं तो आज ही होली खेलने के बहाने तुम सबको छेड़ने आया हूँ। ये कहकर मैंने जल्दी से अपने पड़ोस की भाभी पर पानी डाला। उसे बहुत गुस्सा आया। वो कुछ कहने ही वाली थी कि पड़ोस की दूसरी भाभी ने उसके कान में कुछ कहा। बस फिर क्या था, थोड़ी ही देर में मैं और दूसरी औरतें मिलकर नल पर पानी की होली खेलने लगे। मैं बड़ी कोशिश कर रहा था कि औरतों को छेड़कर भाग जाऊं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खूब हो हल्ला होने के बाद वहाँ की औरतों ने मुझे लाकर मेरी धर्मपत्नी को सौंप दिया और कहा कि मैं वहाँ आकर सारी औरतों को पानी डालकर छेड़ रहा था। अब भाई, इतना कहकर वो सब तो चली गई, लेकिन मेरा क्या हाल हुआ होगा उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। हाय, उस बात की याद आते ही तन मन कांपने लगता है। कुछ दिन बाद मैंने फिर अपने दोस्त को फोन किया, उससे कुछ नया रास्ता बताने को कहा। उसने कहा कि सुन, अब तू किसी शराब की दुकान में जाकर हल्ला कर दे, पुलिस आकर तुझे ले जाएगी। आइडिया अच्छा था। फिर उसने कहा, शराबी के दो ही ठिकाने, एक तो ठेका और दूसरा थाने। मैं मान गया। संध्या समय घर से निकल पड़ा और मोहल्ले के एकमात्र शराब के ठेके पर पहुंच गया। वहां जाकर शराब पी और नशे में मैंने वहां मौजूद दूसरे ग्राहकों और शराबियों से लड़ना शुरू कर दिया। ये देखकर ठेके के मालिक ने मुझे झापड़ मारा और मैं बेहोश हो गया। उसने मुझे घर लाकर छोड़ा और मेरी प्यारी सी धर्मपत्नी को सारी बात बताई। कुछ देर बाद मुझे होश आया, देखा तो सामने यमराज मेरी पत्नी के रूप में बैठा था। उसके बाद की कथा मत पूछिए। अब मैं वास्तव में बहुत दुखी हो चुका था। कोई भी मुझे किसी भी प्रकार की अटेंशन नहीं दे रहा था, बल्कि जिंदगी में बहुत से टेंशन पैदा होते जा रहे थे। बहुत दुखी होकर मैंने फिर अपने दोस्त को फोन लगाया। उसे कहा कि ये मेरा आखिरी फोन है उसे, अगर वह कुछ ना कर पाया मेरे लिए तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। मेरी ये बात सुनकर दोस्त ने घबरा कर कहा कि मैं तुझे आखिरी रामबाण उपाय बता रहा हूं, इसकी सफलता की पूरी गारंटी है। उसने फुसफुसाकर मुझे एक धांसू उपाय बताया। उपाय सुनते ही मैं कह उठा, व्हाट एन आइडिया सर जी। अब रास्ता साफ था, मुझे अटेंशन मिलने ही वाली थी। दूसरे दिन शहर में उस राजनीतिक पार्टी की महासभा हुई और एक महान भ्रष्ट नेता भी आया और एक अच्छा आदमी के नाते मुझको भी बुलाया गया। उस नेता का भाषण चल ही रहा था, मैं उठकर सामने गया और अपना जूता उसे दे मारा। और फिर क्या था, हंगामा खड़ा हो गया, पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। लेकिन फिर मैं अचानक मेरी देखा देखी 5 बंदे और खड़े हो गए और उन्होंने भी अपने जूते उस नेता की तरफ उछाल दिए। चारों तरफ जोरदार हंगामा शुरू हो गया। पुलिस हम सबको थाने लेकर गई और हमें हवालात में ठूंस दिया गया। शहर में बहुत धूम हो गई थी, लोग सड़कों पर आ गए थे, टीवी रेडियो और प्रेस में मेरी चर्चा हो रही थी। कुछ समय बाद हमें एक वार्निंग देकर छोड़ दिया गया और लेकिन लोगों ने हमारी रिहाई पर उत्सव मनाया। मेरे गले में फूलों की माला थी और मुझे गाजे बाजे के साथ घर लाकर छोड़ा गया। मुझे लगने लगा कि अब मुझे अटेंशन मिल रही है। मुझे मेरी अटेंशन 1 पाव किलो नजर आ रही थी। घर पर मेरी बीबी ने मुझे मुस्कुरा कर देखा और कहा, तुम तो बड़े बहादुर निकले जी, और मुझे प्यारी सी झपकी दी। मुझे अब अटेंशन आधा किलो लगने लगी। थोड़ी देर बाद बेटे ने आकर पहुंच हुए और कहा, डैड आई एम प्राउड ऑफ यू। मुझे अब अटेंशन 1 किलो नजर आने लगी, मुझे बड़ी खुशी हो रही थी। पास पड़ोस के लोग आए और कहने लगे, मैं उनके मोहल्ले में हूँ, इस बात पर उन्हें गर्व है। मेरी अटेंशन अब 5 किलो हो गई थी। शहर के लोग मेरा आदर सत्कार कर रहे थे, हर कोई मुझे अपने सभा और कार्यक्रम का अध्यक्ष बना रहा था। मेरा अटेंशन अब 5 किलो से बढ़कर 10 किलो हो गया था। हर अखबार, टीवी, रेडियो, हर जगह बस मेरे ही चर्चे थे। पान ठेले से लेकर सब्जी मार्केट तक और सिनेमा हॉल से लेकर लोकसभा तक हर जगह बस मैं छाया हुआ था। अब मेरा अटेंशन 50 किलो का हो गया था। मैं बहुत खुश था। मेरे बॉस ने मुझे तरक्की दे दी थी। मेरे सहकर्मी रोज मुझे अपना डब्बा खिलाने लगे। ऑफिस की कुछ औरतें मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। यार लोग अब मेरे साथ घूमने आने के लिए तड़पने लगे। मेरी अटेंशन अब 100 किलो से ज्यादा हो गई थी। मुझे बड़ा खुशी हो रही थी। चारों तरफ मेरा नाम था। टीवी, रेडियो और अखबार मेरे नाम के बिना सांस ही नहीं ले पाते थे। फिर अभी कल की ही बात है, जिस राजनीतिक पार्टी के नेता को मैंने जूता मारा था, उसी पार्टी ने मुझे अब मेरे शहर का उम्मीदवार बनाया है और मुझे चुनाव का टिकट दे दिया है। अब मेरे चारों तरफ अटेंशन ही अटेंशन है, कहीं कोई टेंशन नहीं है, बस खुशी ही खुशी है। अरे इतना अटेंशन तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं अब अटेंशन के नीचे दब जाता था। मैंने अपने दोस्त को फोन करके कहा, यार तेरी युक्ति तो काम कर गई, अब चारों तरफ अटेंशन ही अटेंशन है। वो हंसने लगा, अब कोई टेंशन नहीं है। वाह, जिंदगी कितनी खूबसूरत है। वाह, मजा आ गया। हर तरफ सिर्फ मेरे लिए ही अटेंशन। अटेंशन जिंदाबाद, राजनीति जिंदाबाद, जनता जिंदाबाद, अटेंशन जिंदाबाद। अभी आप सुन रहे थे विजय कुमार संपत्ति की लिखी कहानी अटेंशन। गाथा में इस कहानी को आपके लिए प्रस्तुत किया अमित तिवारी ने।